नमस्कार दोस्तों, मोबाइल एंड से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है पक्ष विपक्ष में आम आदमी के जीवन में सरकारी नाम। इससे बसकर एक और सवाल उठता है कि क्या सरकारें चाहती है कि वह लोगों का खाने पीने और पहनने सहित सामान्य चीजों के तौर पर तरीकों को भी तय करें। क्या यह फिर इसी व्यवस्था को एक धार्मिक समुदाय को निशाना बनाने के लिए इस तरीके के आदेश जारी तो नहीं किए जा रहे हैं? आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सरजू है। सर, मोबाइल पर स्वागत सर आपका।
जी नमस्कार योगेश भाई।
सर, ये जो टॉपिक है सर, आम आदमी के जीवन में सरकारी नाक, सर क्या सोचते हैं सर इसको लेकर आप?
देखिए, सबसे पहले तो यह लोकतंत्र है और हम सभी लोकतंत्र में जी रहे हैं, और लोकतंत्र में जनता की प्रधानता होती है, नागरिक की प्रधानता होती है, सरकार की प्रधानता नहीं होती है। और लोकतंत्र सरकार नहीं होती है, सरकार कोई देश नहीं होता है, और सरकार की एक सीमा है, वो सीमा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। परंतु आज के दौर में यह देखा जा रहा है, विशेष करके अपने देश के अंदर, कि सरकार ही अपने आप को देश समझ ली है, और जो सरकार है वो अपने आप को लोकतंत्र समझ रही है, और देश से बड़ी बात समझ ली अपने आप को। जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल रहे है, वो बोल रहे हैं कि देशद्रोही है, सरकार उसको देशद्रोही घोषित करने का प्रयास कर रही है। तो आज सरकार का वर्चस्व जो बढ़ रहा है, इसके कारण लोकतंत्र सिकुड़ता जा रहा है, और लोकतंत्र में जनता की शक्तियां कमजोर होती जा रही। तो यह तो एक प्रकार से तानाशाही की व्यवस्था को पैदा करेगा और लोकतंत्र को कमजोर करेगा। तो जरूरत इस बात की है कि लोकतंत्र के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझे, लोकतंत्र में अपने अधिकार को समझे, और ऐसी सरकार को चुन करके देने वाले भी तो लोकतंत्र के मतदाता ही है। तो मतदाता को भी अपने अधिकार को समझना चाहिए कि हम किस व्यक्ति को चुन करके दे रहे हैं, हम तानाशाहीपूर्ण नीति को चुन करके दे रहे हैं। तो ऐसे तानाशाह के लिए क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे तानाशाहों के लिए भी उपाय है कि जनता मत के द्वारा इनको हटा सकती है, और जब जब तानाशाही हुई है, जनता ने उसको अपने मत के आधार पर बदलने का प्रयास किया है। तो लोकतंत्र के अंदर जनता प्रमुख होती है, सत्ता और सरकार प्रमुख नहीं होती है। सत्ता भी देश के संविधान के अंतर्गत ही चलती है और लोकतंत्र के अंतर्गत चलनी चाहिए। तो आज जो लोकतंत्र के अंदर ये सरकारों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो मतदाता को चाहिए कि इस पे रोक लगाए और अपने मतदान के माध्यम से सरकार की तानाशाही को समाप्त करें।
जी सर। सर, मध्य प्रदेश में हाल ही में जो सरकार बनी है, उसमें उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को बैन कर, यह कदम कितना सही या गलत दिखते सर?
नहीं, एक प्रकार से यह कदम जो है बहुत अच्छा है
जी।
और यह पहली बार नहीं उठा है, इसके पहले यूपी में भी हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है, कई जगहों पे इसको लागू किया गया है
जी।
और यह कदम अच्छा है। परंतु सरकार को चाहिए कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कार्यक्रम न करे, यह चलाए तो सभी के लिए चलाए
जी,
किसी विशेष धर्म, विशेष व्यक्ति या विशेष मजहब के लिए न चलाए। और एक बात इसमें अच्छा दिखाई दे रहा है योगेश भाई, कि उन्होंने कहा है कि सभी के लिए होगा, कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे, जिनको बजाना होगा ऐसे बजाए कि वो अपने अंदर ही काम कर ले। वो तो बढ़िया निर्णय है, क्योंकि इससे देखिए कि चारों तरफ का वातावरण खराब होता है और सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, बच्चों के पढ़ाई का समय होता है, वो पढ़ाई नहीं हो पाती है, अभी परीक्षाएं आ रही है, वो डिस्टर्ब होती है। तो यह अनवरत के लिए हमेशा के लिए बना देना चाहिए कि आप माइक बजाइए, साउंड सिस्टम बजाइए, जो बजाने बजाइए, लेकिन आप ऐसा बजाइए कि उसकी ध्वनि जो है कैंपस के बाहर ना जाए, दूसरे को प्रभावित न करे। क्योंकि आजकल लोगों का जीवन खुद ही इतना व्यस्त हो चुका है कि जब शाम को लोग घर पहुंचते हैं, जब शाम को बच्चे अपने घर पहुंचते हैं, जब काम शाम को लोग अपनी नौकरी, अपने काम से, अपनी खेती बाड़ी से घर पहुंचते हैं, सोचते हैं कि हमको आराम मिले, और आप वहां पे पोगा बजाने लगे, आप वहां पे माइक बजाने लगे, तो लोगों का स्ट्रेस बढ़ जाता है, लोग चिड़चिड़ा होते हैं। तो सरकार का यह निर्णय बहुत अच्छा है, इससे ध्वनि प्रदूषण तो रुकेगी, लोगों के अंदर जो तनाव होता है वो भी कम होगा। परंतु सरकार को चाहिए कि किसी प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर न करे, करे तो ये सबके लिए करे, सरकार का स्वागत योग्य कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए।
जी सर। सर, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दूसरा यह कदम उठाया गया है कि खुले में मांस का विक्रय सड़क किनारे नहीं होगा, इस पर पाबंदी लगाई गई है। इसको किस तरीके से देखते हैं, और जिस तरीके से फुटकर व्यापारी और अपनी आजीविका चलाते हैं, उसको कितना प्रभाव पड़ेगा सर?
देखिए, यह एक प्रकार से आजीविका चलाने का बहुत बड़ा साधन बन चुका है आज के समय में
जी।
तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि लोगों की आजीविका न रुके, लोगों के जो खान पान है उस पर भी प्रभाव न पड़े। हाँ सरकार का यह कदम ठीक है कि खुले में अपना भेज, इससे देखिए योगेश भाई क्या होता है, हमारा वातावरण बहुत प्रभावित होता है, वातावरण प्रभावित होता है, उसके साथ साथ जो जीव जंतु वो सेवन करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, उससे बहुत दिक्कत होती है। एक तो हमारे वो नदी के किनारे या कहीं भी इसको काट करके साफ करके डाल देते हैं तो पानी में जाता है, जिससे नदी प्रभावित होती है,
जी
चाहे हम लोगों के जल स्रोत प्रभावित होते हैं, अपना वातावरण खराब होता है। तो यह बात सही है। और एक इसमें यह भी सरकार जो कह रही है कि लाइसेंस ही होना चाहिए, यह भी बहुत अच्छी बात है
जी
कि दूसरे लोग ना करें यह काम, जिनके पास लाइसेंस है वही लोग करें, लाइसेंस का रास्ता सुलभ कर देना चाहिए, ठीक है, जो करना चाहते हैं लीगल तरीके से वो काम करे। परंतु
जी
यह निर्णय बहुत बढ़िया है सरकार का कि खुले में नहीं होना चाहिए, इससे कई
जी
प्रकार की दिक्कतें आती है, कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही है।
जी
सरकार रोक नहीं लगाई, सरकार कह रही है कि आप खुले में न करिए, आप
जी
अपना व्यवस्था कर लीजिए, तो सरकार का स्वागत योग्य कदम है। और
जी
इसको सभी व्यापारी साथियों को जो इसके धंधा कर रहे हैं मटन चिकन का, उनको मानना चाहिए और मान करके दायरे में आकर के काम को करना चाहिए।
जी सर। सर एक रिपोर्ट के अनुसार NCBI के डाटे के अनुसार सर 24 स्तर के सर 2013 में सर 104 मिलियन व्यक्ति वार्षिक एलयू 24 स्तर के जो व्यक्ति है यह ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होते हैं और इनको हृदय रोग, रक्तचाप जैसी और भी अन्य अन्य बीमारियां होती है ध्वनि प्रदूषण से। तो कितना विराम लग पाएगा सर ऐसे कदम उठाए जाने
यह एक बहुत छोटा कदम है, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए और कई प्रकार के उपाय करने चाहिए। उसमें यह उपाय करना चाहिए कि आज देखिए कि हर घर में बाइक, हर घर में कार की संख्या बढ़ रही है, तो
जी?
सरकार को तो एक ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि एक घर में एक ही कार रहेगा और एक घर में अधिक से अधिक दो बाइक रह सकती है, और इससे ज्यादा अगर किसी के पास है तो उनको पेट्रोल डीजल की उपलब्धता नहीं कराना चाहिए। आप दिल्ली को उठा करके देख लीजिए कि दिल्ली अभी एक हफ्ते 10 दिन के लिए बंद हो गई थी, वहां पे इतना पॉल्यूशन है, वहां के पॉल्यूशन का कारण केवल पराली जलाना नहीं है, वहां के पॉल्यूशन का कारण है लोगों की उपभोगवादी नीति और बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या। और ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने में केवल माइक का ही रोल नहीं है, यह गाड़ियों की भी संख्या है, नाना प्रकार के प्रयोगों के प्रयोग किया जा रहा है। आज आप योगेश भाई देखिए कि शादी विवाह में इतने तेज डीजे बज रहे कि डीजे अगर अपने घर से 500 मीटर दूर बज रहा है तो उसकी ध्वनि अपने 500 मीटर घर के अंदर आती है और घर की दीवालें हिलने लगती है, इतने तेज डीजे बजाए जा रहे। ये कई प्रकार के प्रदूषण को इससे रोका जा सकता है और रोक लगाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि व्यापक स्तर पर इसे रोक लगाए ताकि लोगों के जो मानसिक तनाव हो रहे हैं, लोगों की जो धड़कनें बढ़ रही है, लोगों के जो बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, उसको दूर किया जा सके। तो सरकार को चाहिए कि सख्ती के साथ निपटे और उसकी एक समय सीमा निर्धारित कर दे कि इस समय के अंदर ही आपको बजाना है, इसके बाद माइक कोई एक डीजे वगैरह नाना प्रकार के ध्वनि प्रदूषण नहीं होने चाहिए। और गाड़ियों की संख्या की भी लिमिट कर दे, उनको सीमित करे, उनके जो फेरे होते हैं चलने के उनको भी सीमित करे और नाना प्रकार के प्रतिबंध इस पर लगाए ताकि लोग अपने ये ध्वनि प्रदूषण की बीमारियों से बच सके।
जिस तो ये थे डॉक्टर अनूप सर जिन्होंने मोबाइल वाणी पर आम आदमी के जीवन में सरकारी नाक इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। सर मोबाइल वाणी को समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी योगेश भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जी मोबाइल वाणी सबका दोस्त योगेश धन्यवाद।